शची पुत्रमात्रा स्वरूपम् रूपम् तस्या व्रजवरिपुरीम् माथुरीम् गोष्ठवाटिम् राधाकुण्डम् गिरिवरमहो राधिका माधवासाम् प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुम् तम् वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिजे यं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि न जिह्वामि इति कल हमने श्रीमद् भागवत का श्लोक सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रहो इस श्लोक आरंभ किया और उसमें हमने अन्याभिलाषिता रूप गोस्वामी का श्लोक लिया। रूप गोस्वामी जी भक्ति तत्व के गुरु हैं। यदि भक्ति कुछ सीखना है तो रूप गोस्वामी के यहाँ सीखना है। भक्ति के 64 अंग बतलाए गए और उसमें पहला ही अंग 10 अंग केवल गुरु तत्व के हैं। पहले संग सेवा विसंभेन गुरु सेवा दीक्षा हरिणा और विषम्भ के साथ में प्रीति के साथ में लौकिक सतबंधुवत की भांति उनकी सेवा और उनसे पूछना और पूछ करके उसको श्रवण करके समझना और वैसा ही चलना, ये भक्ति के 10 अंग पहले बताए। हमारे भारतवर्ष में सर्वत्र ऐसा नियम है कि कोई भी काम करने के पहले विशेष करके ठाकुर जी का अर्चन करना होगा तो किसका पहले अर्चन होता है? पहले गुरु जी का अर्चन होता है। अब मान लिया कि जिसका गुरु नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? अर्चन किसका करेगा? गड़बड़ हो गया। यदि कहो जो कृष्ण का है, कृष्ण उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक भागवत में वो हमारे चक्रवर्ती ठाकुर जी का श्लोक है, जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जिसकी कृपा ही भगवान की कृपा है। गुरु यदि भगवान यदि रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु मना लेगा, भगवान किसी प्रकार से रुष्ट हो गए गुरु मना लेगा, किंतु गुरु रुष्ट हो जाएगा तो भगवान नहीं मनाएंगे। आपको घर में कोई भी विवाह शादी कोई भी काम करना है तो गुरु जी की पहले जरूर गुरु जी के को प्रणाम करेंगे, और गुरु जी नहीं है तो किसका प्रणाम करके आरंभ करेंगे? इसलिए हमारा हिंदू समाज ही ऐसा बना हुआ है जो एक लौकिक गुरु और पारमार्थिक गुरु, पहले तो लौकिक गुरु हम लोगों के यहाँ होते हैं और फिर इसके बाद में पारमार्थिक गुरु लाभ होते हैं। तो तो उनसे परमार्थ लाभ होता है। इसलिए ध्रुव जी ने हमने बतलाया गुरु किया किसको, प्रहलाद जी ने। अब अम्बरीश महाराज चलते हैं भक्ति का विचार। प्रहलाद जी के प्रभु को आराध्य देव को भूख नहीं लगती, थकावट नहीं होती, प्यास नहीं लगती, इसलिए वो हाथ जोड़ करके सौ स्तुति कर लेंगे बस। किंतु अम्बरीश महाराज जी अभी साधक हैं, सिद्ध नहीं है। प्रहलाद महाराज जी सिद्ध है और अम्बरीश महाराज जी अभी सिद्ध नहीं है, किंतु करते क्या हैं? रहते हैं वृंदावन में, वास करते हैं मधुबन में और ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जमुना चारों तरफ में वो परिक्रमा करते हैं ब्रजमंडल की। तब वह कृष्ण की लीला स्थली, जन्म स्थली, गोकुल इत्यादि तो जरूर दर्शन करते होंगे। और उन्होंने अपना मंदिर बनाया, कहाँ बनाया? रहने वाले मध्य प्रदेश के थे, किंतु गोबर यहाँ मथुरा में बनाया अपना एक सीट और मधुबन में। और सिर से ठाकुर जी को प्रणाम करते, अपने सिर से, हाथ से साष्टांग दंडवत, पैरों से ब्रजमंडल की परिक्रमा और हृदय से भगवान का चिंतन। इसी तरह से मन से भगवान चिंतन, वाणी से भगवान का कथा, दूसरों से कहते थे भगवान का लीला चरित्र, उनकी जन्म इत्यादि लीलाएं बताएं। कान से भगवान की कथाओं को सुनते थे, सिर से प्रणाम करते थे, समस्त इंद्रियों को, ग्यारह इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया। ये चाहिए, ठाकुर जी को विधिवत भोग लगता उनके घर में, उनके आश्रम में। इस प्रकार से उनका जीवन। एक दिन की बात है, उनके यहाँ द्वादशी था, द्वादशी का व्रत किया, एकादशी ठीक नहीं थी, वो विद्या थी, दसवीं विद्या, दसवीं मिल गया था, इसलिए छोड़ करके द्वादशी किया। और उस द्वादशी में वो निर्जला किए थे, निर्जला उपवास। उस निर्जला उपवास में आ जाइए आगे, यहाँ सामने, यहाँ आ जाइए, आइए आइए यहाँ, आप लोगों को देख करके हरी कथा कुछ होती है, बैठ। तो वो पहले दिन पानी कुछ पिया, दूसरे दिन एकदम निर्जला रहे और तीसरे दिन ठाकुर जी की पूजा करके, जबकि पारण का समय केवल व्रत छोड़ने का समय आया, तो केवल 10-15 मिनट बचे थे कि 2 मिनट 4 मिनट, इतने में महर्षि दुर्वासा जी आए। इन्होंने कहा जी आप तो बड़े समय पर आए हैं, आप प्रसाद पा करके और तब जाएंगे। और जब मैं स्नान करके आऊं जमुना में, और जमुना जी में जानबूझ करके देरी लगा दी, और पारण करने का समय, व्रत खोलने का समय अब 1-2 मिनट रह गए, अब क्या करना चाहिए? इधर तो ब्रह्मर्षि को निमंत्रण दिया, वो आए नहीं, यदि व्रत खोलते हैं तो उनका अपमान होगा, आपको स्मरण किया था, बतलाया था किसी ने, एक जरूरी काम है थोड़ा सा। ठीक, इनके यहाँ जाना। तो क्या बतला रहा, अब व्रत तोड़ें कि व्रत की रक्षा करें? यदि व्रत नहीं तोड़ते हैं तो उस महर्षि का अपमान करना होता है, बुलाया और उसे भोजन करने के पहले खा लिया। और यदि महर्षि के लिए रुक करके उनको खिला करके करते हैं तो हमारा व्रत टूट जाएगा एकादशी का, तो इसे भगवान की सेवा हमारी बंद हो जाएगी। इसलिए भगवान की सेवा गुरुत्वपूर्ण है, भले ही आकर के वो हमको अब श्राप दे देंगे कोई भी बात नहीं, हमारा पुण्य कुछ खाए हो जाएगा कोई बात नहीं, किंतु भगवान का व्रत हम नहीं तोड़ेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने केवल जल से पारण किया, भोजन नहीं लिया, कुछ ग्रहण नहीं लिया, क्योंकि जल से पारण करने से, व्रत खोलने से पारण हुआ भी और नहीं भी हुआ, तो जो ही लिया उतने में दुर्वासा आ गए, समझ गए जो तो ले लिया और बड़े क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के अभिसंपात दिया और जटा का एक केस खोल करके और उन पर फेंका, जाओ इसको जला दो। उसमें से एक राक्षसी पैदा हुई और भयंकर आग का रूप धारण किया। जब जलाने गई तो चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहे थे, आकर के उसे जला दिया और ऋषि को जलाने के लिए दौड़े वो भागते भागते शिव लोक, ब्रह्मा के लोक में, यहाँ तक कि नारायण के लोक में गए। नारायण ने भी मना कर दिया, जाओ उस भक्त के चरणों में अपराध किया, वहीं पर तुम्हारा क्षमा हुआ। और एक वर्ष तक अम्बरीश महाराज खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़े थे, ये हमारे लिए इस ऋषि को इतना कष्ट हुआ, चक्र चाहता तो जला देता, किंतु अम्बरीश महाराज प्रार्थना करे हे चक्र उनको जलाओ मत, इसलिए जलाया नहीं। इसके बाद में लौट करके आए, उनके चरणों में गिरे तो उन्होंने वही उनके चरणों में गिरे, हमारे लिए हे ब्राह्मण आपको कष्ट हुआ। तब उन्होंने कहा कि हो आज मैंने वैष्णव की ये बड़ी भारी महिमा देखी, भगवान भी उसको निभाने के लिए उसकी रक्षा करते हैं, मैं किस गली का हूं। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज जी का चरित्र, सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। इसलिए अभी सिद्ध नहीं है तो भी श्रेष्ठ है। हनुमान जी का चरित्र थोड़ा सा और देखिए आगे। हनुमान जी बिना सेवा के भगवान के रह नहीं सकते, यह मंदिर में भी बैठे हुए हैं, अभी कभी देखते हैं छोटा सा, कभी विराट रूप, कभी मशक के समान, कभी कुछ, इनकी सेवा की सीमा नहीं है, ऐसी सेवा करते हैं। यहां तक कि एक समय भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता जी चारों ने मिलकर के विचार किया कि हनुमान तो हमारी सारी सेवाएं ले लेता है राम की, और हमारे लिए कोई सेवा ही नहीं बनती, वो दिन रात उनके पास में बैठा रहता है, उनकी सेवा कभी पैर दबाता है, कभी कुछ करता है, कभी फल लाता है, सब समय सेवा करता है, और हम लोग सेवा नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए। अब हम लोग चारों आदमी बांट ले, रात की सेवा सीता जी करेंगे और दिन का सेवा चमट बुलाएंगे भरत जी, शत्रुघ्न जी और सेवा करेंगे, लक्ष्मण जी सेवा करेंगे, इस बंदर की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, आए हनुमान जी तो मना कर दिया, कहा जी अब कोई सेवा नहीं है, हम लोगों ने ले ली है, अब आप बाहर में विश्राम कीजिए घर के बाहर। हनुमान जी ने कहा, उनके चरणों में गिरे, बिना सेवा के तो मैं मर जाऊंगा, कोई ना कोई हमको सेवा तो जरूर दीजिए। तो क्या कोई अब सेवा बची नहीं तो सेवा तुमको कहां से दें, अतः नहीं कुछ न कुछ दीजिए। ऐसा कीजिए, भगवान को कभी कभी जम्भाई तो आ सकती है, तो चुटकी बजाने का काम हमें दे दीजिए। तो भगवान को तो जम्भाई होती ही नहीं है कभी राम को, तो ठीक है तो और अच्छा है। तो उन्होंने कहा अच्छा था, ये सेवा तुम्हारे लिए है, अब वो बाहर में बैठ गए, घर में तो आने दिया नहीं, भवन में बाहर में रह करके और चुटकी बजाने लगे और रामचंद्र जी को जम्भाई आने लगे। अब न खाए न पिए न सोए न कुछ, दिन रात नींद भी नहीं आए और वो चुटकी बजाते रहे, चुटकी छोड़े नहीं। तो देखा जी अब हमारी सेवा ही तो सब बंद हो गई, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और सीता जी की कोई सेवा ही नहीं कर सके, भोजन नहीं कर सके, सो नहीं सके। तब तो फिर बड़ा मुश्किल, हनुमान जी से क्षमा मांगा तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के तो फिर ऐसे सेवा करते हैं। सीता जी की चोरी चली गई तो पता कौन लगाया, हनुमान जी ने लंका को जला दिया। इस तरह से भगवान राम की इच्छा जान करके लाखों सेवा करते हैं, इसलिए हनुमान जी। किंतु एक बात है, इतने हनुमान जी सेवा करते हैं, कभी कभी कुछ फल लिया बहुत मीठा, खा लिया बहुत मीठा है तो वो जूठा नहीं दे सकते, आलिंगन राम को नहीं कर सकते। ब्रज के सखाओं का कैसा भाव, कृष्ण को आलिंगन कर लेंगे, बिस्तरे पर सो रहे हैं तो उठा लेंगे, अरे सारे उनको उठा लेंगे, हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी कभी भूल करके भी राम के कंधे पर नहीं बैठेंगे, उनको अपने कंधे पर बैठाएंगे। और ब्रज के सखा कृष्ण को खेल में हरा कर उनके कंधे पर बैठ जाते हैं और कृष्ण बड़े खुश होते हैं। इसलिए हनुमान जी का चरित्र और सेवा और भी उच्चतर, बड़ी ऊंची। अब हनुमान जी से भी श्रेष्ठ कौन है जो निरंतर सेवा कर सकते हैं, अब वो कौन हो सकते हैं सोचिए, पांडव लोग कैसे। एक दिन नारद जी शंकर जी से बोले, भगवान मैं भगवान राम का सबसे प्रिय या कृष्ण का सबसे प्रिय व्यक्ति देखना चाहता हूं, आप हस्तिनापुर में जाइए और वहां पांडवों के घर में, अर्जुन के घर में जाइए, वहां पर देखिए। वो गए तो देखा क्या, बिना लेकर के गए थे, देखा क्या, एक पलंग है उस पर सो रहे हैं कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन का सिर एक तरफ है और कृष्ण का सिर एक तरफ है, कृष्ण के शरीर के ऊपर से अर्जुन का पैर जा रहा और उसे द्रौपदी और सुभद्रा जी पलोट रहे हैं। और दूसरी तरफ में कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती से होकर के जा रहा है और अर्जुन अपने अंक में रखे हैं और दूसरी सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि उसे दबा रही है, चवट ढुला रही है और अर्जुन के मुख से राम राम राम, कृष्ण 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 निकल रहा है। देख करके वो नारद जी प्रेम में विभोर हो गए। ऐसे एक पलंग पर हनुमान जी नहीं सो सकते, सेवक हैं बड़े, ठीक है, किंतु इस विषय में कुछ सेवा की कुछ माधुरी है, हनुमान में कुछ ऐश्वर्य का भाव है। ये प्रभु हैं, विश्व ब्रह्मांड का लय कर देने वाले हैं हमारे प्रभु, और इनके प्रभु में कुछ वैसा भाव नहीं है, ऐश्वर्य जरा कम है। ओ, यही तक नहीं, एक समय की बात है, अर्जुन द्वारका में आए। अर्जुन कैसे थे देखने में, कृष्ण के समान श्याम रंग के थे, भुजाएं बड़े लंबी, आंखें बड़ी बड़ी मनोहर आकर्षक, शरीर भी वैसा। उसे देखकर के कृष्ण की बहन सुभद्रा मोहित हो गई और उधर अर्जुन उसको देख करके मोहित हो गए, वो भी बहुत सुंदरी थी, कृष्ण की बहन साधारण नहीं, सुभद्रा। कृष्ण से अर्जुन ने कुछ बातचीत की और इसके बाद में हम जैसे त्रिदंडी सन्यासी हैं वैसे त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर और समुद्र के किनारे वहां पर बैठ करके एक छोटी सी कुटी बना करके भजन करने लगे। अब तो सारे द्वारकापुर की जितनी जनता थी उनके पास में आने लगी, यहां तक कि कृष्ण भी आए, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। चारों तरफ में प्रसिद्धि हो गई कि द्वारका में एक बहुत उच्च कोटि का महात्मा आया है और वो सब समय ध्यानस्थ रहते थे, कोई आ गया तो बिना बातचीत किए वैसे आशीर्वाद मंगलम भवति। द्रौपदी की इच्छा हुई, द्रौपदी भी गई। इधर बलदेव जी भी गए, उनको प्रणाम किया, उनको भी आशीर्वाद दिया अर्जुन ने। इसके बाद में द्रौपदी जी जब आई, द्रौपदी ने सुभद्रा जी आई तो रथ पर आई तो अर्जुन ने क्या किया, संन्यास का जो वेश था वही रख दिया और सुभद्रा जी का हाथ पकड़कर रथ पर बैठा दिया और घोड़ों की लगाम वो उनके हाथ में दे दी और वो हांकने लगी घोड़ों को और ले चलने लगी कहां, इंद्रप्रस्थ। और अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए युद्ध करने के लिए और जो सामने आया सबको हरा करके लौटा दिया। बलदेव जी ने कहा, अरे हमारी बहन का ये अपहरण कर रहा है, हल मुसल लेकर के और दौड़े वहीं से। कृष्ण ने कहा, जी भैया कहाँ जा रहे हो? तो हम जा रहे हैं अर्जुन को मारने के लिए, उसे मार करके ही छोड़ेंगे, हमारे जीवित रहते हमारी बहन का वो अपहरण कर लिया, का ये तो वीरों का काम है। आपने किसका, सांब का जब विवाह हुआ तो सांब गया पांडवों के कौरवों के घर में और दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा को हरण करके ले आए और आप जाकर के इसके तरफ से लड़ करके उससे ले आए हरा कर, ये तो वीरों का काम है। अर्जुन वीर है इसलिए ऐसा किया, इसमें हर्ज क्या हुआ? आप एक दुष्ट स्वभाव के दुर्योधन से उसकी शादी करने का आपने इच्छा की है, ये ठीक नहीं है। अर्जुन सब प्रकार से योग्य है, वसुदेव महाराज देवकी हम सभी लोग चाहते हैं। कहते तो पहले क्यों नहीं बतलाया, जहा बतला रहे हैं। देखो किंतु इतना होने पर भी पांडव लोग, एक चीज की कमी है, क्या कमी है? कृष्ण के प्रति इनका अत्यंत स्नेह है, बहुत स्नेह है। छोटा बड़ा हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम बारीकियों का विचार करके साधकों के लिए जो साधक को कैसा होना चाहिए तारतम्य दिखला रहे हैं भक्ति की और सेवा की। तो महाभारत का युद्ध हो रहा था, होने वाला था, कृष्ण ने कहा बीच में हमारा रथ ले चलो, हम देखेंगे जे इस राज्य के लिए कौन कौन हमसे लड़ने आ रहा है। उन्होंने देखा, कहा जैसे अब मैं नहीं लड़ूंगा, धनुष बाण छोड़, ये तो हमारे सगे संबंधी भाई पति साले दामाद ये सभी हमारे यहाँ पर पितामह भीष्म पितामह जी हैं और लोग लड़ने के लिए आए हैं, इनको मार करके रक्त से सना हुआ मैं राष्ट्र सिंहासन नहीं लूंगा। कृष्ण ने क्या किया, विश्व रूप उनको दिखलाया, पहले तो समझाया और उसके बीच में विश्व रूप दिखलाया। देखते ही अर्जुन डर गए, उन्हें जे प्रभो मैं आपको आज तक सखा कहा, शाला कहा, आपने हमारा रथ धोया, हमारे घोड़ों को पानी पिलाया, हमारे घोड़ों का पैर आपने संभाला, मालिश किया, अब मैं आज से सखा नहीं कहूंगा, मैंने बहुत बड़ी भारी गलती की है, इसलिए हमारे दोषों को क्षमा करते हैं और पहले वाला रूप आप दिखलाइए। अब ये देख करके हमारी आंखें जल रही हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो कृष्ण ने दया करके, कभी कभी इनका प्रेम टलमल हो जाता है भगवान का ऐसा ऐश्वर्य देख करके, किंतु जसोदा मैया को कृष्ण ने दो बार दिखलाया विश्व रूप उनका कुछ नहीं। उन्होंने कहा इसको हांकनी डाकनी लग गई ना क्या हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा काली गैया का मूत्र और गोबर ले आओ। काली गैया का गोबर और मूत्र लाया गया, दोनों को मिला करके तरल करके और काली गाय के पूंछ से उनको, किसको, ये विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक है, उनको झाड़ पूंछ कर रहे, उनका भूत और डाकनी साकनी को हटा रहे हैं। और कहा जे 10,000 गायें दान करनी होगी, तो 10,000 गायें भी दान करवा दिए। किस है ये प्रभु से, इसलिए इनकी सेवा कैसी है, कैसी है इनकी सेवा, ये विचार कर रहे हैं। अमरनाथ जी एक कीर्तन कीजिए, आइए। एक कीर्तन सुनाइए अनाशक्ति की, माने ठीक है, इसलिए निकट रहिए हमारे कथा में, निकट रहिए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम, जरा ऐसा करें तो अच्छा, हम लोग बड़े सुखी थे। किंतु देखिए आप शास्त्र का विरोध कर रहे हैं, हम मन रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा शास्त्र ऐसा कोई नहीं है जो गीता प्रेस को छोड़ करके इसको नहीं कहता है। वेदों में पलिसंतरण उपनिषद में यहां तक कि जितने भी पुराण में है आपको प्रमाण दे करके मैंने एक पुस्तक लिखी है, आपको दिखला दूंगा। इसलिए जैसा भी आप कीजिए,
Thank you. सकल के नाची अब
बड़े सुंदर हरिलाल की जय जय श्री राम हो मेरो Thank you.
एक समय कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में जमुना का किनारा मिला। कृष्ण ने कहा, ये देखो जमुना का ये किनारा है, पानी लाओ, पानी पिएंगे। कृष्ण को रथ पर छोड़ करके और अर्जुन आए तो पानी ले जाने के लिए, तो देखा वहां पर हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को प्रणाम किया। तो बातचीत उन लोगों में होने लगी कुछ। तो अर्जुन ने कहा, राम को तुम वीर बतलाते हो, हम उन्हें वीर नहीं मानते। राम को तो क्यों नहीं मानते? तो एक समुद्र के ऊपर में 100 मील लंबा और बाणों से पुल नहीं बांध सके, बेचारों को बंदरों और भालुओं की सहायता लेनी पड़ी और वो पत्थर ले आकर के जोड़ करके पुल उन लोगों ने बनाया। तो राम में इतना सामर्थ्य कहाँ था? मैं होता ना तो तुम्हारे जैसा वो पत्थर ले आकर के पुल बनाने की जरूरत, 1 मिनट के अंदर में बाणों से ही पुल बांध देता। देखो तुम पुल तो बांध सकते हो, हनुमान जी ने कहा, पुल तो बांध सकते हो, किंतु हम लोगों का भार नहीं सहेगा और इतनी बड़ी बंदरों की ये थी सेनाएं थी, उनको कैसे वो सह सकेगा? कर ताजमा करके देख लो, चैलेंज दे दिया। उन्होंने भी चैलेंज, अच्छा तो देखेंगे तुम्हारा पुल हमारा भार सह सकता, बस यहीं से कूदे और कूद कर चले गए हनुमान हिमालय में। अब विराट रूप, विशाल रूप बनाया और रोम रोम में पत्थरों को बांध दिया और एक बहुत बड़ी भारी शिला हाथ पर उठा ली और लेकर के वहां से चले। देख करके इनका होश अर्जुन का उड़ गया, ये तो पुल हमारा सहेगा नहीं। और उधर हनुमान जी सोच रहे थे, यदि ये पुल नहीं टूटा तो हमारे प्रभु के ऊपर में कलंक आएगा, ये वीर नहीं थे, क्या किया जाए? पुल तो बनाया है बड़ा मजबूत बाणों का। वहां से आकाश से उतरे, उतर करके इधर में अर्जुन कृष्ण को बुला रहे हैं और उधर में हनुमान जी किसको? राम को। मनी मन में समझ, प्रभु आज लज्जा रखना, और वो कह रहे हैं आप मेरी लज्जा रखना। तो उस समय में हनुमान जी ने एक पैर उठाया और पुल के ऊपर में रखा, किंतु पुल टस से मस नहीं हुआ। ये क्या बात हो गई? हमारे इस भार को उसने सह लिया? बड़े भीतर में ग्लानि हुई, आज तो राम के ऊपर में कलंक आएगा। इसलिए उन्होंने पहला पैर उठा करके जब दूसरा रखना आरंभ किया तो नीचे देखा जमुना में रक्त की धार बह रही। रक्त की धार कहां से आई? तुरंत कूद पड़े और नीचे झांका, देखा जे अर्जुन ने देखा जे कृष्ण ने पीछे पीठ लगाया है और हनुमान जी ने देखा जे राम ने पीठ लगाया है और उनके इसे। हनुमान जी बड़े दुखी हुए, बोले जे प्रभु हमारे लिए आप इस प्रकार से कष्ट सह करके रक्त निकल रहा और पुल की रक्षा के लिए ऐसे बैठे। और उधर में अर्जुन प्रार्थना कर रहे कृष्ण जी, कृष्ण से जी प्रभु मेरे लिए आप पुल के नीचे बैठ करके और रक्त से आपके मुख से निकल रहा है और इतना आप कष्ट सह रहे हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में वहां से कृष्ण और राम दोनों निकल करके आ गए कृष्ण के रूप में। और कृष्ण बोले ये देखो हनुमान, जानते हो मैं प्रेम के वशीभूत हूं, इन्होंने प्रेम से मुझे वशीभूत कर लिया है, अपनी बहन की शादी इनसे करनी पड़ी, हमारे घोड़ों को ये धोते हैं मलते हैं, तुमको भी इनकी सेवा करने पड़, जब प्रभु ही सेवा कर रहा है तो उनका दास क्यों नहीं करेगा, इसलिए तुम इस लीला में मैं ही राम इस समय कृष्ण हुआ हूं, इसलिए अर्जुन युद्ध करेगा तो उसके ध्वजा पर विराजना, इसलिए उनके ध्वजा पर विराजते हैं और अर्जुन की सब समय रक्षा करते हैं, जिसमें कोई बाण आता है भीष्म पितामह कर्ण या और लोग द्रोणाचार्य हैं, बाण ऐसे चलाते हैं जो ये मर जाएंगे, इनके रथ को जला देगा तो रथ को नीचे दबा देते हैं और बाण चला जाता है तो ऊपर में उठा देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा गर्जन करते हैं जो उनका बाण मिस कर जाता है, इधर का उधर निकल जाता है, तो बतलाओ ये कैसे प्रिय है। किंतु फिर भी कभी कभी इनको ये हो जाता है जो प्रभु ये भगवान है, इसलिए उनका प्रेम शिथिल हो जाता है और क्षमा मांगने लगते हैं। अब ब्रज में यही देखो, यशोदा मैया को कृष्ण ने बचपन में जो बतलाया, मैंने बतलाया अभी एक बार, दूसरी बार भी ऐसे हुआ था, दो दो बार। तो पांडव लोग कितने उच्च कोटि के हैं, किंतु पांडवों से भी श्रेष्ठ कौन है, ये तो बहनोई हैं और कुंती के नाते से भाई हैं, कुंती जी वसुदेव जी की बहन है अपनी और उनके लड़के हैं पांडव लोग, इसलिए ममेरे भाई हुए, दोनों भाई भी लगते हैं, इसलिए दोनों में इतना प्रेम है संबंध है। और इनसे श्रेष्ठ हैं उद्धव। उद्धव क्या करते हैं, कृष्ण के अपने भाई हैं, अपने कुटुंबी में से हैं, अलग से नहीं है, और उद्धव जी कृष्ण के मंत्री हैं, ये बृहस्पति के शिष्य हैं, भाई भी हैं, मंत्री भी हैं, सलाहकार देने वाले हैं, सब प्रकार से उनके दास भी हैं, मित्र भी हैं, बहुत से संबंध इनसे हैं, इसलिए उद्धव जी बचपन से इनकी सेवा कर, जो पांडव लोगों के लिए संभव पर नहीं है। जब कंस को मारा कृष्ण ने और आ गए मथुरापुरी में, फिर वहां से द्वारकापुरी में चले गए, उद्धव जी सब समय साथ रहे, पांडव लोग सब समय साथ नहीं रहे, कभी कभी उनकी राजधानी में जाते थे जब उनको जरूरत होती, और ये सब समय उनके साथ रहते। ऐसे उद्धव जी को कृष्ण क्या करते हैं, कभी कभी जरूरत होती है तो अपना प्रतिनिधि बना करके किसी जगह में भेजते हैं जहां अपना नहीं जाते हैं, पांडवों को नहीं भेज सकते, वृंदावन में कृष्ण को जरूरत हुई तो किसको भेजा, उद्धव जी को भेजा, अपने पिताजी को, मैया को और दूसरे लोगों को। जब कृष्ण का विरह दुख इतना, विरहाग्नि इतनी अधिक हुई, अब मरे तब मरे, उनको सांत्वना देने के लिए पांडवों को भेजेंगे नहीं, क्योंकि प्रेम का उतना गूढ़ अर्थ नहीं जानते हैं। प्रेम ढाई अक्षर का है, जाने सो पंडित, नहीं तो पंडित नहीं, कौन पंडित कौन है, ढाई अक्षर का जो प्रेम का पाठ पढ़ा। आज उद्धव कृष्ण वृंदावन से आ गए हैं। अच्छा ये बतलाइए, विरह किसको अधिक होता है, जिससे प्रेम हो तब तो शत्रु से विरह होगा, शत्रु के लिए मर जाएगा तो अच्छा ही हुआ मर गया, तब विरह किसके लिए होगा, जिसके लिए प्रेम हो, जिसको हृदय में अपना सर्वस्व दे दिया है उसके लिए विरह। कृष्ण को सबसे प्यारा कौन है? ब्रजवासी लोग हैं, सखा लोग उनके अत्यंत प्रिय हैं। उनसे भी अधिक कौन प्रिय हैं? मैया यशोदा जी। अब कथा को सावधानी से सुनिए, अब दशम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, अब दशम स्कंध की कथा यहां से चलेगी। निवृत्त तरसई रूप गीयमानात भव सदात सोत्री मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात विरज्ये बिना पशुघ्नात। वो कोई ऐसा पशु होगा जो कथाओं, भगवान की कथा हो रही है और उसको सुनता नहीं है प्रेम से, वो कौन है? पशु के समान। और वो कथा कैसे निकल रही है, ये कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कह रहे हैं। निवृत्त तर से, जो संसार से निवृत्त हो चुका है, संसार की कोई भी आवश्यकता नहीं, जिसको अपना पराया कोई नहीं है, कृष्ण ही उसके अपने अपने हैं, ऐसा जो निवृत्त तर्श, उसके लिए उसके मुख से जो भगवान की कथा निकलती है वो त्रिभुवन को उद्धार कर देती है। ऐसी कथा को जो लोग सुनते नहीं हैं मन से लगा करके, वो कैसे हैं? पशु हैं। पशु माने दो प्रकार के, एक पशु जिनका वध किया जाता है और दूसरे वो पशु हैं जो पशुओं का वध करते हैं, अपनी आत्मा का वध करते हैं। ये पशु कैसा है? अपनी आत्मा का वध करने वाला है। कैसे? जन्म जन्मांतर के बाद में मनुष्य शरीर मिला और ऐसे महापुरुष के द्वारा कथा हो रही है, उसको ये सुनता नहीं है, उसको मानता नहीं है और उसके अनुसार में चलता नहीं है, तो ये कैसा है? पशु घन, पशुओं को मारने वाला, अपनी आत्मा को मारने वाला है वो। उनके मुख से निकली हुई कथा कैसी है? भौरों की औषधि है। भौ माने क्या? पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे गमन, पुनः पुनः अपनी माता के कोख में आना और फिर जाना, फिर आना, लगा रहा। कभी पुरुष हुए, कभी स्त्री हुई, कभी स्वर्ग की अस्पराएं हुए, कभी देवता हुए और कभी सुकर कुकर गधे ऊंट इत्यादि हुए। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला और इस जन्म में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान गुरु से लाभ नहीं किया, लौकिक धर्म में ही रह गए, पारलौकिक धर्म में नहीं प्रवेश किया, उसके समान अपना हत्यारा कोई भी दूसरा नहीं है। अतएव आप ऐसी कथा कह रहे हैं, पानी पीने के लिए अब मैं नहीं जाऊंगा, बहुत पानी पिया, पानी के लिए तो ये सब कुछ हुआ, अब पानी पीना नहीं है, अब सोना नहीं है, दिन रात आपकी कथा हम सुनेंगे, बस दिन रात कथा सुनने लग गए, तो अब सावधानी से सुनेंगे। ऐसे जो कृष्ण हैं, त्रिलोक के जो स्वामी हैं, विश्व ब्रह्मांड का लय करने वाले, रचना करने वाले जो उनके अंश हैं, कृष्ण स्वयं रचना नहीं करते, उनके अंश के अंश के अंश के कलाएं ये सब करते हैं। ऐसे जो कृष्ण हैं, नंदा की मकरोद ब्रह्मण, हे ब्रह्मण, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, भूत भविष्यत वर्तमान को जानने वाले सुखदेव गोस्वामी आप, जीव जीव के घट घट में बास करने वाले आप जानते हैं, इसलिए बतलाइए नंदा की मकरोद ब्रह्मण। ओ नंद महाराज ने ऐसा कौन सा कल्याणजनक कार्य किया, कौन सा यज्ञ किया था, तपस्या किया था, तीर्थों में स्नान किया था, दान किया था, जो जो कृष्ण को अपना पुत्र मान करके उनकी सेवा करते थे और कहते थे जी कन्हैया जरा मेरी जूती लैया, तो और वो नाचते हुए जाते और नंद बाबा की जूती सिर पर रख करके ले आते खड़ा। साधारण बात है। जो भगवान श्री कृष्ण, जो राम, नृसिंह, कल्कि, वामन इत्यादि के भी मूल के मूल के भी मूल हैं, आज वे नंद बाबा का एक गोप का खड़ाऊं लेकर के या जूती लेकर के और नृत्य करते हुए आ गए। बेटा वो जरा वो पीढ़ी लाना, तो पीढ़ी जानते हैं बैठने का लकड़ी का आसन, तो उठा रहे तो उठता ही नहीं है, वहां करते हैं वो विश्व ब्रह्मांड को उठा सकते हैं और एक पीढ़ी नहीं उठती, ऐसी ब्रज में लीला कर रहे हैं। तो वो ऐसे महोदय महासौभाग्यवान नंद बाबा हैं, कौन सी तपस्या की, उस तपस्या को हम जानते तो कर करके उस ऐसा ही हम पुत्र के रूप में उस पर ब्रह्म को हम बुला लेते। जसोदा चा महाभाग, और जसोदा मैया वो तो और महाभागनी है, उसके समान और कौन सा सौभाग्यवान होगा। जस्यास्तन पपौ जस्यास्तन, स्वयं हरि विश्व ब्रह्मांड के रचना करने वाले और पालन पोषण करने वाले स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर आज उनका स्तन पान करके अघाते नहीं है, तृप्त नहीं होते, और पिएंगे और पिएंगे और पिएंगे। इसलिए जब उनसे और पीने की लालसा हुई तो करोड़ों सखा बन करके और करोड़ों बछड़े बन करके एक वर्ष तक दूध पान किया। ऐसे ये कृष्ण है, ऐसे महाभागा ये नंदा जी, यशोदा जी और महाभागवान, दोनों में कृष्ण के प्रति प्रेम है। बतला सकते हैं किसका प्रेम कृष्ण में है अधिक, क्यों, बाप पिता का होता है या मैया का होता है। यहां पर पिता परास्त हो गए, मैया जीत गई, मैया का प्रेम कृष्ण के ऊपर में अधिक है, इसलिए पहले नंद बाबा को कह करके फिर दूसरे में नंबर में लिया प्रधानता के रूप में। थोड़ी सी दामोदर जी की लीला सुना दो तो। श्याम रानी यू शुड कम हियर इन फ्रंट एंड वेयर इज सुंदर गोपाल, वेयर इज सुंदर गोपाल, ओ यू शुड कम हियर
जैसे आप लोग विष्णु जी के संयुक्त से सुन रहे हैं कृष्ण कैसे कैसे ब्रज में लीला रचाई। एक दिन माँ जसोदा सोचा हो ब्रज में सब गोपियां उलाहना देती हैं कि जसोदे तेरा कन्हैया आज मेरे घर में मक्खन चुराया, आज ये किया, बात सच है या कहीं, माता जसोदा को ये विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है कि मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा ये मक्खन चुरा सकता है, कभी हो सकता है। एक दिन एक गोपी ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया, कहते कान्हा तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी माँ तो मानती नहीं, तो नहीं नहीं मेरा कान्हा तो छोटा बच्चा है, ये कैसे मक्खन चुरा सकता है, पकड़ के ले जाने लगी। रास्ते में बोला मैया दे मेरे हाथ इतना कोमल है, जलन हो रहा है, तू एक काम कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, हाथ छोड़ दे। मैया ने बताया अरे कान्हा तू तो बहुत नटखट है, मैं समझ गई तू भागना चाहता है। नहीं मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुझे विश्वास ना हो तू मेरे दूसरा हाथ पहले पकड़ ले फिर छोड़ दे। तो गोपी मैया ने बताया ये बात तो सही है, तू पहले दूसरा हाथ दे तो सही तब इसको छोड़ूंगी। तो कृष्ण ने क्या किया, उनके पीछे सखा लोग थे, एक सखा को बुलाया, बुलाकर सखा हाथ को पकड़वा दिया और वहीं से पीछे से जाकर के माँ जसोदा के भवन में जाकर के सो गया, चादर तान लिया मानो सो रहा है। जब घर में आई वो गोपी दया नक कर रही है, जसोदे यशोदे ओ जसोदे, जसोदा मैया आई अरे सखी तू सुबह से क्यों स्वर मचा रही हो, मेरा कन्ना सो रहा है जग जाएगा, तनिक सोने तो दे सही। बोले अरे तेरा कन्ना सो रहा है कि मक्खन चुरा रहा था? बोले मेरा कन्ना मक्खन चुरा रहा था। बोले हाँ मैं उनको पकड़ के ले आई, दिखा तो सही। इतने में कृष्ण क्या किया, विस्तार से उत्तर के आए, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। इधर कृष्ण आ रहा है अंदर से, मारे सर अच्छा ठीक है, दिखा तो मेरा कान्हा को कहा, जब ही कपड़ा उठाया तब देखा, ओ माय गॉड, अपने बेटा को पकड़ के ले आए। तो बेटा भी उनके साथ में था मक्खन चुराने में, उनका बेटा। कृष्ण कहा देखो मैया, ये आपकी सहेली जितनी है ये सब झूठ बोलती है, देखो अगर मेरे तेरे घर में नहीं सोता होता तो क्या करती, ये कहती कि हाँ जी चुराता, तू भी विश्वास कर लेती, अब काल से मैं जरूर जाऊंगा मक्खन चुराऊंगा ही, झूठ क्यों बोल रही है ये ऐसे करती है, ये कोई बहाना बना करके आती है, मेरा इंजम लगाती है। तो जसोदा ने सोचा अहो सब क्या झूठ बोलती है, हो सकता है मेरे घर में जो दास दासियां हैं नौकरानी काम करती हैं, दही खट्टा हो जाता होगा इस कारण मक्खन मीठा नहीं होता, दूसरे घर में गोपी अपने अपने दूध काटती है, दही जमाती है, मंथन करते मक्खन मीठा होता होगा, ठीक है। वो दीपावली के अवसर पर सबको छुट्टी दे दी जसोदा मैया ने, खुद अपने हाथ से दूध दोया, दही जमाई, फिर दही मंथन कर रही थी, सुबह सुबह पहले दही मंथन कर लो फिर घर का काम करूंगी, क्योंकि सबको छुट्टी दे दिया। और कृष्ण को लगी भूख, धीरे बहुत मुश्किल से बिस्तर से उतरे, मैया मैया जोर जोर से रो रहा है कृष्ण, क्यों, बालानाम रोदनाम बलम, बच्चों का अस्त्र क्या है, रोना ही सबसे बड़ा अस्त्र है। रोते रोते सामने कभी माँ सुन नहीं पा रही है, क्यों, तन्मय होकर के मैया क्या कर रही है, दधी मंथन कर रही है, कृष्ण की बाल लीला याद आ रही है, क्या कर रही है, गोविंद रामो सुनाई नहीं पड़ा। तो अरे मैं इतना रो रहा हूं मैया सुन नहीं रही है, सामने आकर के एक हाथ से दधि मंथन दंड को पकड़ा, दूसरे हाथ से मैया को जो कपड़ा है सिर पर उसको पकड़ लिया। मैया ने कहा क्या बात है, दधि मंथन रुक कैसे गया, मोड़ करके देखा, अरे तो मेरा लल्ला है, उठा करके गोदी में रखकर स्तनपान कराने लगे। कृष्ण विश्व ब्रह्मांड के नायक, पेट कभी नहीं भर सकता है, और माँ जसोदा क्या है, वही तो उनके माँ है जिनके कोख से कृष्ण जन्म लिया, माँ जसोदा के स्तन में इतना दूध है, सारा खीर समुद्र माँ जसोदा स्तन से निकलता है, इससे उनका माँ जसोदा स्तन कभी दूध कभी समाप्त होगा ही नहीं, कृष्ण लाखों जन्म तक पिता रहे दूध समाप्त नहीं होगा। अब कॉम्पिटिशन चल रहा है, इतने में हुआ क्या, माँ जसोदा जो चूल्हा पर दूध रखा था ऊपर ऊपर करके गिरने लगा, दूध ने सोचा अहो माँ जसोदा के स्तन में इतना दूध है तो कभी खत्म तो होगा ही नहीं, तो मुझे तो सेवा का मौका ही है ही नहीं, क्या करूं, इसके बजाय मैं आग में कूद करके जीवन को समाप्त कर दूं। माँ जसोदा ने देखा अरे दूध तो ऊपर करके गिर रहा है, इस दूध को मेरे बचाना है, क्योंकि मेरा स्तन के दूध से न तो मक्खन होगा न छना बनेगा, कुछ भी नहीं हो सकता है, दूध को बचाना है, क्योंकि दूध कृष्ण के लिए है। माँ जसोदा कृष्ण को बेटा बैठ जा, तो देखा माँ को छुड़ाना चाहा, कृष्ण ने क्या किया, बंदर के बच्चा जैसा माँ को पकड़ता है, पैर से माँ के कमर को पकड़ लिया पैर से, और दोनों हाथों से स्तन को पकड़ा, छोटी सी दांत जीवा से जोर से दबाया, माँ तो छुड़ा के जा नहीं सकती है। जब कृष्ण 6 दिन के केवल शिशु थे उस समय 6 कोस वाली पुतना कृष्ण को छोड़ 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 कर छुड़ा न सकी, उनको कृष्ण स्तन के साथ पान पी गए प्राण को। इधर माँ जसोदा की इस समय कृष्ण करीब 2.5 साल का उम्र है, और पैर से पकड़ा हाथ से जीवा से दांत से माँ जसोदा कोई परेशान नहीं लगे, हाथ से उतरे बैठ जा यहीं पर, बैठा के माँ जसोदा चली गई, दूध को बचाने पानी दिया, दूध को शांत किया। सिद्ध काली, मैं बड़ा हूं मां के लिए कि दूध बड़ा है, मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है, मेरे लिए दूध है कि दूध के लिए मैं हूं। माया मुझे छोड़कर के दूध को बचाने के लिए गई, ठीक है मैं भी मजा चखाता हूं। कृष्ण गुस्सा आया, देखा पासी में माँ जो मसला पीसती थी वो थोड़ा सीला लोड़ा, समय लोग जानते नहीं होंगे इस काम में लिखा के लोग, वो क्या किया लोड़ा को उठा करके ऊपर मारना चाह, ऊपर सख्त है तोड़ न सके, जो विश्व ब्रह्मांड के नायक और घोड़ा को तोड़, घड़ा को तोड़ नहीं सकते हैं, मिट्टी का घड़ा को, सोचा मैं नहीं नीचे मारू तो अच्छा रहेगा, क्यों तो समस्त दही निकल जाएगा, ये दही मंथन जितना खुराबत का मूल है, तो दही मंथन मैया ना करती तो मैया मेरे साथ बिस्तारा में रहते दूध पीता, ठीक है इसको पहले नष्ट करना है, पीछे से मारा और जैसे पिचकारी से निकल रहा है सीन की जैसा, बहुत आनंद हुआ, ताली बजाने लगे, दूसरे मुहूर्त को बहुत डर लगा रही, पर मैया आ जाए तो क्या होगा, मुझे तो डांटेगी मारेगी, अब लगातार वहीं से दूसरे कमरे में चले गए। जब चोर कोई चुराता है जितना भी सावधानी से क्यों ना करें कुछ ना कुछ निशान छूट जाता है, खुफिया पुलिस आकर के उनको पकड़ लेता है। जब कृष्ण जाने लगे ये दधी जो फैल गया था उसको कैद लेके गए, मानो बता रहे माँ को मैया देख तेरा कृष्ण इधर से जा गया है, पैर का छाप पड़ गया। कृष्ण अंदर गए, जाकर के देखा कि सिक्के में मक्खन रखा हुआ है और पास में ही उखल उल्टा पड़ा हुआ था, उस पर चढ़ गए, माखन को ले रहे हैं और खा रहे हैं और कौए को बंदर को सबको खिला रहे। कैसे, पहले दरवाजा खोल दिया, इतने चतुर है इतने बुद्धिमान है, अगर मैया आएगी तो मैं दरवाजा पहले खोल के रखता हूं तो मैं भाग जाऊंगा। तो जब ही खोला बंदर और कौए आ गए, उनको खिला रहे, क्यों खिला रहे हैं, जो कौए हैं ये काकभूषण भी जो भगवान रामचंद्र जी के लीला को लीला कथा बचते हैं बाचते हैं उनके शिष्य लोग उनके परंपरा में है, ये कौओं को खिला रहे हैं, बंदर को क्यों, जब भगवान रामचंद्र जी रावण के लिए मारने के लिए गए थे उस समय मेघ सेना कौन थे, बंदर लोग, उस समय इस समय का युद्ध हो अपने गवर्नमेंट को सेना को खिलाना पड़ता है, जैसा अमेरिका सेना का इराक में है, सब अमेरिका भी यह कर रहा है, ऐसे नियम है। रामचंद्र के समय रामचंद्र ने क्या किया, बंदर कुछ खिला न सके, मन में प्रतिज्ञा किया हो मैं जब कृष्ण लीला में कृष्ण के रूप में आऊंगा अपने हाथ से तुम लोगों को खिलाऊंगा, इसलिए वही कृष्ण रामलीला का स्मरण करके अपने हाथ से बंदर को मक्खन खिला रहे हैं, उन लोग बहुत आनंद हो रहा है। मैं आकर के देखा नटखट तो है नहीं, गया कहां, तो पैर का छाप देख करके समझ गई ओ मेरा लाला तो अंदर गया है, छोटी सी बेल उठाई, उठा करके अंदर गई, जाकर की बार कारण छिप गई, जी मां अंदर में गई, कृष्ण का मुंह तो उधर है क्योंकि कृष्ण उधर मक्खन बंदरों का कौ के लुटा रहे हैं और बंदरों का कौ के मुंह कृष्ण की ओर है, बंदर और कौए ने माँ चसुरा को देख लिया, भागने लगे कौए और बंदर, क्या बात है फिर मक्खन चढ़ भाग क्यों रहा है, बाहर क्यों निकल रहा है, सब बोलने ये मैया अब पकड़ने जा रही थी कूदे नहीं से, जसवा ने सोचा हो तू तो मेरा पेट से जन्म लिया, तू कितना बुद्धिमान होगा मुझसे और कितना दौड़ेगा, माँ जसवा ने उनसे कहा दौड़ी, कृष्ण ने सोचा मैया तो घर की बहू है बाहर तो जाएगी नहीं तो मैया मुझे पकड़ भी नहीं सकती, मैया ने देखा अब तो इसमें कोई है नहीं, सब लोग गोचर में चले गए, मैया कृष्ण से भी अधिक दौड़ते हुए कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को पूछा अरे कान्हा ये घड़े को तोड़ा किसने, मैया मुझे कुछ पता नहीं मैं तो तोड़ा नहीं, मैं कैसे तोड़ सकता हूं घोड़ा को, बोले तू नहीं तोड़ा, बोले नहीं मैया, बोले कैसे टूटा, बोले मैया तू जब दूध को बचाने के लिए जा रही थी तेरे पैर में जो बहुत मोटी मोटी सुने करूला है ना तो जल्दीबाजी जा रही थी उसे टक्कर से लाकर के टूट गया, उसे मेरे कुछ दोष नहीं है। तो मैया का अरे तू बंदर 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 को कौन खिलाया, बोले जिसने बनाया उसने खिलाया, कृष्ण भगवान ने उसने सृष्टि किया ये बता रहे हैं, तो जो सृष्टि उसने खिलाया। मैया ने कहा लाला तू चोर है, इसमें मैया मैं चोर हूं, मेरा वंश में कोई चोर है नहीं, तेरा वंश में चोर है। जसोदा के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम था चोर घोष, और नंद बाबा के नाम बाबा का नाम परजन्य देव, उनके वंश में कोई चोर घोष तो है नहीं। कहते मैया तेरे वंश में चोर है, मेरे पिताजी के वंश में कोई चोर नहीं, इसलिए मैं चोर नहीं हूं। सारी ये तो बहुत नटखट है, बहुत डील है।
जो रेशमी डोरी जो मैया जुड़ा बांधती थी उसी में बंधन में आ गए।
मैया जिसने देखा आपको, अब क्या करूं, इसको कुफल से बांधना होगा, क्योंकि जो चुराता है और उनको चुराने में जो मदद करता है उनका उसका था है, दोनों समान दोषी हैं। इसलिए मैया बोले दोनों को ही बांध के रखूंगी, कुकर के साथ बांध दिया। मैया चली गई और इसमें कृष्ण सकल दूर से देख रहे थे, माँ के डर से कोई नहीं सामने आए। जब मैया चली गई और काली कही इसमें कन्हैया क्या बात है, अब तो पकड़ जा रहे ना, अब देखो मैया ने क्या शास्त्र दी। पहले कृष्ण तो माँ के पास रो रहे थे, अब सखा काली बाजार चिल्ला रहे कृष्ण हंस रहे हैं। तो एक काम कर, कृष्ण ने बताया हम बाहर जाएंगे तो सुबह ठहर जा, मैं खोल देता हूँ। पहले खुलने गए, मैया का बंधन सखा नहीं खुल सके। मधुमंगल आया, अरे सारे तुल से नहीं होगा, मैं खुलता हूँ, वो भी नहीं खुल सके। एक अगर सखा है ऐसे सारे तुल जा धक्का मुक्के करे, कोई नहीं खुल सके। कृष्ण बता एक काम कर, आपस में लड़ना नहीं, एक काम कर मैं खींचता हूँ और तुम लोग इसको खेलो, बाहर जाके खेलूंगा, अगर घर में ऐसे करूंगा तो मैं आ जाएगी सबको डांटेगी। अब कृष्ण खींच रहे हैं, सखा लोग खेल रहे हैं। पास में दो अर्जुन वृक्ष था, जो नलकुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के दो पुत्र नारद ऋषि के अभिशाप से वृक्ष बने थे। कृष्ण ऐसे उनको खींचा, सखा लोग खेल लेते अड़ गया, कृष्ण तुम्हें हट जाओ, ये खींचा दोनों अर्जुन का वृक्ष ऐसे जोर से साउंड हुआ, दोनों साइड से गिर पड़े। इतना जोर शब्द, सब ब्रज के लोग शब्द सुनकर शब्द के तरफ दौड़ते हुए आए, कहां से शब्द आया, क्या हुआ, आके देखा ऐसे कृष्ण सकल सब उसमें है। उसने दो देवता निकले, कृष्ण को प्रणाम किया, सरस्वती की परिक्रमा करके चले गए। जब नंद बाबा आए, उनको कृष्ण को देखते ही नंद बाबा को हृदय पिघल गया, आज यदि कृष्ण दब जाता तो। कृष्ण बाबा को देख करके अब रोने लगे, सखा के साथ हंस रहे थे, बाबा को देखते ही रो पड़े। बाबा ने पूछा ये किसने बांधा, मैया ने, तेरी मैया ने बांधा। नंद बाबा ने उसको खोला, खोल करके कृष्ण को दी में लिया, मैया ने बांधा। और सखा लोग कह रहे बा 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 काका काना मारा, उखाड़ दिया तो देवता निकले, तो त्रि भाषा में बोल रहे हैं, उनको प्रणाम किया, परिक्रमा किया। नंद को विश्वास नहीं हुआ, देवता का प्राण से पेड़ से निकलेंगे, कैसे इसका प्रणाम किया परिक्रमा करेगा, वो बाबा तो सुने ही नहीं, विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उनको बलदेव प्रभु और कृष्ण को दोनों को लेकर के गोशाला में गए, धारोस में दूध यानी गाय के स्तन से दूध काट रहे हैं, पिला रहे हैं डायरेक्ट मिश्री कुंड में दे करके। पूछा खाना तेरे मैया, तेरे मैया को मारूं, मैया थे नहीं, बोले नहीं, कृष्ण हाथ पकड़ लिया। और मैया तो डर के मारे नंद बाबा के पास में आए नहीं, और कोई नहीं आए। शाम हो गई, यशोदा का आंख की आंसू भी सूख गई, कैसे आए नंद बाबा के सामने। बलदेव को उपानंद प्रभु की स्त्री और रोहिणी मैया जा उनको पकड़ के ला, बलदेव प्रभु तो कृष्ण को हरा देते हैं, ऐसे आज कृष्ण झटका दी बलदेव प्रभु गिर पड़े, कैसे देख रहे हैं। फिर उपानंद प्रभु की स्त्री ने पूछा अरे काना तू माँ के पास जाएगा नहीं, खाएगा क्या, बाबा ने मिश्री धारस में दूध पिलाया था, मैं खा उसको पी लूंगा, खेलेगा किसके साथ, दाव के साथ, बाबा के साथ, सोएगा किसके साथ, बाबा के साथ, जाएगा नहीं, फिर नहीं जाएगा तो तेरे मैया जैसे रहा हो जाए तो। तब कृष्ण जही सुना मैया 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 करके रोने लगे, तो स्वरूपानंद की स्त्री कृष्ण को लेकर के माधेश्वर गोदी में दे दिया, और माधेश्वर इतना डकर डकर रोने लगी और सब ब्रज रोने लगे। इतनी सलीला भी आनंद कुंडे, ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार लीला करके समस्त ब्रज को इसमें आनंद समुद्र डुबो देते हैं कृष्ण। फिर ऐसे कृष्ण की क्यों ऐसे करते हैं, जब ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण में थोड़ा सा भी घट जाता है, ऐसे ऐसे कुछ विपद आपद को कृष्ण जोगमाया का जरा बुला लेते हैं, ऐसे कृष्ण का प्रेम रिन्यू हो जाता है। ऐसे जो दाम बंधन लीला है, ये माधेश्वर कृष्ण की कितना प्रेम है, जो भगवान किसी भी अवतार को कोई न बांध सके, ये स्वयं भगवान कृष्ण को मैया बांध करके दिखा दिया, माँ दशरथ कितना अधिक प्रेम है कृष्ण के प्रति, तभी उनको बांध सके हरे कृष्ण।
कीर्तन करो तो जिसको सभी लोग आ सकते
Thank you.